Pocket Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki taazank mein aapka swagat hai. Adhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन. नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैम.
थैंक यू मनोज.
आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार.
हेडलाइंस, डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडेक्सेस एंड विद मार्जिनल लॉसेस. सेंसेक्स होल्ड्स 80,000 लेवल. निफ्टी सेटल्स एट 24,194. The cabinet approves PAN 2.0 project, aims at transforming taxpayers' registration services through technology. And global crude prices rise over 1%. Brent crude trades at $73.78 per barrel.
दो दिन तेजी के बाद आज थोड़ा सा फिसल गए घरेलू शेयर बाजार. मामूली घाटे में रहे प्रमुख सूचकांक. सेंसेक्स 80,000 के स्तर से ऊपर आज भी बना रहा. निफ्टी 24,194 दर्ज हुआ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन 2.0 परियोजना को दी मंजूरी. तकनीक के प्रयोग से आयकरदाता पंजीकरण सेवाओं में बदलाव का है लक्ष्य. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी. 1% से अधिक ऊपर आए ब्रेंट क्रूड के दाम $73.78 प्रति बैरल के आसपास चल रहे हैं. घरेलू शेयर बाजार में लगातार दो कारोबारी सत्र में तेजी के बाद आज थोड़ी सी नरमी देखी गई. प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए. हालांकि छोटी और मझौली कंपनियों के प्रति रुझान आज भी बना रहा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 106 अंक यानी 0.13% घटकर 80,004 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 27 अंक यानी 0.11% की कमी लेकर 24,194 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां पर छोटी और मझोली कंपनियों में दिलचस्पी आज भी बनी रही और इनका प्रदर्शन सेंसेक्स निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई. वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स टुडे एंडेड विद मार्जिनल लॉसेस, स्नैपिंग इट्स टू डे विनिंग स्ट्रीक. द 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स ड्रॉप्ड 106 पॉइंट्स और 0.13% टू क्लोज एट 80,004, व्हाइल द एनएसई निफ्टी 50 स्लिप 27 पॉइंट्स और 0.11% टू सेटल एट 24,194. मीनवाइल द ब्रॉडर मार्केट एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंडेड इन पॉजिटिव टेरिटरी. द मिड कैप इंडेक्स एडेड 0.1% एंड द स्मॉल कैप इंडेक्स गेन्ड over 0.5%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies logged losses. Among the top laggards, Adani Ports shed over 3.2%, Ultratech Cement lost over 3%, and Sun Pharma fell nearly 2.5%. Conversely, in the top gainers, Asian Paints and Infosys both increased over 1.7%, JSW Steel rose over 1%, and TCS gained over 0.8%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 12 out of 20 sectors ended in the negative territory. In the top laggards, utility slipped over 1.7%, power lost over 1.5%, and auto dipped over 1.2%. Among the top gainers, information technology advanced 1.1%, focused IT gained over 1%, and tech added over 0.8%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,277 companies advanced and 1,644 declined, while 110 remain unchanged. At the National Stock Exchange, 76 companies hit their 52-week high, while 37 hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 5 पैसे घटकर 84.33 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतरदिवसीय कारोबार में 106.77 पर चल रहा था. सुषमा जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। पिछले दो सत्रों में हमने अच्छी खासी बाजार में तेजी देखी, आज भी मजबूत ही दिख रहा था आरंभिक कारोबार में शेयर बाजार, लेकिन फिर जो गिरावट का सिलसिला हुआ तो मामूली घाटे के साथ बंद हुआ है आज सूचकांक, किन अर्थों में ले रही कारोबार को?
देखिए, जैसे आपने कहा कि मामूली सी गिरावट आई है, और मेरे ख्याल में कुछ खास वजह हैं। एक तो खैर प्रॉफिट बुकिंग हुई है कि दो दिन इतनी तेज़ी से स्टॉक मार्केट ऊपर गई, बुलिश ट्रेंड चल रहा था। दूसरी बात यह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्टॉक मार्केट्स का रवैया रहा है, एशियन मार्केट्स, यूरोपीय मार्केट्स दोनों नीचे गई हैं। हालांकि यूएस मार्केट कल तक रिकॉर्ड लेवल्स पे गई थी, पर वो भी अभी धीरे धीरे थोड़ी फ्लैट हो रही है, क्योंकि ये जो खबर है जो जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि वो टैरिफ्स बढ़ाएंगे, खासकर अपने नज़दीकी देशों पर, मेक्सिको और कनाडा के इंपोर्ट्स के ऊपर और चाइना के ऊपर। सबसे बड़ी बात जो चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स बढ़ने जा रहे हैं,
एंड इंटरेस्टिंगली इंडिया हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ दैट लिस्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
इन फैक्ट दैट नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, बट दैट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया एट द टाइम बीइंग, बिकॉज़ यू नो वी आई थिंक एवरीवन हियर हैज बीन रादर वरीड अबाउट दैट, बिकॉज़ लास्ट टाइम ट्रंप वाज प्रेसिडेंट ही डिड इंपोज टैरिफ्स ऑन यू नो स्टील एंड एल्युमिनियम इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, and we did of course we retaliated also. So there is concern not just in these countries but around the world, because tariff wars will hit everyone. If China decides to retaliate by imposing tariff walls, then you have a spiraling kind of a situation.
Indeed.
And that is everybody, I think, not European Union leaders are talking in terms of concerns over trade wars. So this is certainly an issue. That is why the stock markets definitely around the world have reacted.
Talking, Sushma ji, of the broader market, especially the small caps and the mid caps, we have seen the kind of the blood on the streets over the past maybe 20 odd sessions now.
Yes.
But with the past 2-3 sessions, of course, they have also kind of bounced back like anything. If you look at the mutual fund bouquet of the small caps and the mid caps, they have risen quite drastically over the past 3 sessions. So here on, have we actually? I mean, it's really difficult to guess here, but broadly speaking, have we seen the worst behind us or bottoming out, as we say that?
You know, it's difficult to say that whether the bottoming out has happened, but it is true. Two things are very distinctive about the Indian stock markets. Number one is, although we have had such a huge outflow of foreign institutional investors for the last 2 months, the fact is that we also have a huge numbers of domestic institutional investors. And these retail investors are the ones who have really kept our market going. We would have had a far bigger collapse if it had not been for the faith of the domestic investors in the market. So this is a phenomenon that has occurred that is very specific to the Indian stock market. This has started from 2020. We had a large number of retail investors, and even now there's a record number, I think, of DMAT accounts. Study has shown 197 million DMAT accounts. So we are, you know, that this equity culture, which was there in the country, but suddenly, you know, blossomed, spurted, as it were, from 2020 onwards. And you have this support to the stock market. So even though FIIs were going out, you still had this support. The second thing that is very specific to the Indian stock markets is what you talked about, the small caps. This surge in the small caps has been going on for quite some time. And the faith that the investors have put in small caps is, again, unusual. If you see other stock markets, you will not see this kind of reliance on small caps. You will be the large cap, the blue chips, and the medium cap. But small caps is something, the surge in that area, something again very specific to the Indian stock market.
Yes, they are the so-called gold mines, if
yes,
we may say so.
यहाँ पर यदि हम सेक्टर वाइज देखें और इस साल का हम प्रदर्शन देखें सुषमा जी, तो किस सेक्टर को आप पूरा यानी दिसंबर महीने में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है जो बेहतर प्रदर्शन कर सका है? पिछले पूरे कई उतार चढ़ाव के दौर हमने देखे हैं, उसमें कौन सा सेक्टर सबसे टिकाऊ आपको लग रहा है?
देखिए, टिकाऊ तो बैंकिंग है इस वक्त. बैंकिंग तो कई दशकों से चल रहा है, इट बहुत ही स्टेबल है बैंकिंग. और दूसरा ऑटो क्षेत्र है, ऑटो और फार्मा, और आईटी तो हमारा वैसे ही बहुत सदाबहार सर चली कह सकते हैं.
And before we move any further, let's take a look at some other news of the day. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has given its approval for the PAN 2.0 project at the Income Tax Department. The financial implications for the PAN 2.0 project will be 1,435 crore rupees. PAN 2.0 project is an e-governance project for re-engineering the business processes of taxpayer registration services through technology-driven transformation of the PAN and TAN services for enhanced digital experience of the taxpayers. This will be an upgrade of the current PAN and TAN 1.0 ecosystem, consolidating the core and non-core PAN-TAN activities as well as PAN validation service. The PAN 2.0 project resonates with the vision of the government enshrined in the Digital India by enabling the use of PAN as common identifier for all digital systems of specified government agencies. Meanwhile, the Union Cabinet approved the launching of the National Mission on Natural Farming, that is NMNF, as a standalone centrally sponsored scheme under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It has been with the total outlay of 2,481 crore rupees. National Mission on Natural Farming will be implemented in 15,000 clusters in Gram Panchayats. The Union Cabinet also approved the continuation of its flagship initiative, the Atal Innovation Mission, AIM, with an enhanced scope of work and an allocated budget of 2,750 crore rupees for the period till March 31st, 2028. AIM 2.0 is a step towards Viksit Bharat that aims to expand, strengthen and deepen India's already vibrant innovation and entrepreneurship ecosystem. Sushma ji, with this PAN 2.0 project now being announced yesterday in the Cabinet Committee on Economic Affairs, how do you see this new project kind of facilitating more, if you talk more of businesses and commerce here, how is it going to help them more?
I think one thing perhaps not mentioned in your story is the fact that they are going to have a QR code in this card.
Yes, yes,
I think this is
right.
Something that is very, very significant.
Absolutely.
Because the problem that has arisen is that these PAN cards, and we are requiring them at every stage of, for any identification, for getting any clearance, any approvals, whether it is minor or major, everyone wants a PAN card. So you take the copy of the PAN card and you send it. Now your PAN card, thus the security of the PAN card, thus becomes suspect. And especially for businesses, this is an area of concern. So we talked about businesses. Now, if you have with a QR code, then that security remains of your PAN card. And that's the most important thing. And that is why if you install the QR code, then it becomes able to create what they call a common identifier, that you can make this instead of Aadhaar. It can be the PAN card, which would be a common identifier.
Correct.
And of course, even now a PAN card is used, but not so widely as the Aadhaar card. But this would be, if you have the QR code, especially businesses, as I said, they would like to, probably ask their employees to have this kind of a identification system.
You lay so much of emphasis on the QR code, but yes, if we may jog our memories, 2017 backwards, before 2017, the PAN cards didn't contain the QR code. It was only 2017 onwards that the QR code was introduced and the PAN cards were complete with that QR code. So what about the cards which were issued prior to 2017? Are they going to be revamped or upgraded or something like that?
I'm sure there will be a facility to do that. You will have to do that. But I hope that is done. One of the issues in upgrading of PAN cards has been the IT the framework for this for the PAN card has not been very smooth or seamless, unfortunately, and people have had a lot of problems in upgrading or even a replacement of PAN cards. It takes place and it is online, but even then there have been a lot of problems. So I would hope by now, I mean, I don't have any personal experience, but I would hope by now that they have made this system far more smooth and improved the IT infrastructure. We are a country known for our IT services. So certainly the government websites, the government's systems need to be upgraded, I feel, a lot more than they are at present.
All right.
मैम, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि पैन 2.0 के को लाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है और इससे क्या आम जनता को अपने कर संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में जो जटिलताएं थी वो कम हो पाएंगी, या मुख्य रूप से यह किन क्या लाभ पहुंचाएगा संपूर्ण व्यवस्था को?
देखिए, इफ़ इट बिकम्स मोर सिक्योर, आपकी सिक्योरिटी पैन कार्ड की बढ़ जाती है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए पैन कार्ड की. और जैसे मैंने कहा कि हम इसका कॉपी करते रहते हैं, भेजते हैं, सब जगह भेजते हैं, इसको व्हाट्सएप पे भेजते हैं और ईमेल पे भेजते हैं, तो इसकी अगर सिक्योरिटी जिस कार्ड को बनाया है कि उस कार्ड को कॉपी मिलने के बजाय वो कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता जब तक आपके सामने वो कार्ड असल में ना हो जाए, तो इससे जो जैसे मैंने कहा बिजनेसेस फिर इसका इसके ऊपर ज्यादा रिलायंस कर सकते हैं. इसके ऊपर जो उनके पास एम्प्लॉयज आते हैं, बिजनेसेस आते हैं कि उनके पैन कार्ड्स, उनके लोग जो हैं वो ऑथेंटिक हैं वो. और जैसे आजकल खैर इतने स्कैम्स हैं, वो थोड़े कम हो जाएंगे, और बिजनेस बढ़ाने में भी आसानी होती है कि आप ऑथेंटिक लोगों से डील कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स पेयर हैं और इनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेस में ये बहुत उपयोगी रहेगा.
इनफैक्ट इवन एज यू मेंशन्ड अबाउट दैट कॉमन आइडेंटिफायर थिंग इन दिस पैन 2.0, वी आर गिवन टू अंडरस्टैंड दैट द टैन नंबर, you know, which is so very common with the business entities, that shall be kind of subsumed within the PAN with the PAN 2.0 project.
Okay, so that's another yes, benefit that, to
yes,
this whole
indeed,
thing.
Yes.
So the whole thing is being upgraded, and actually the cost is not much if you see this. If you do upgrade a very huge project like this, 1,435 crore is not a very huge amount for this kind of upgradation.
Absolutely. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. भारत ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी वचनबद्धता को पुष्ट करते हुए रियाद डिजाइन कानून संधि के निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं. ये संधि औद्योगिक डिजाइन संरक्षण, कुशलता बढ़ाने और विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की पहुंच को सुगम बनाने के लिए प्रक्रियागत ढांचे में मेल स्थापित करती है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि प्रक्रियागत आवश्यकताओं का मानकीकरण करके डिजाइन कानून संधि डिजाइन में वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम करती है. इसका उद्देश्य सुव्यवस्थित डिजाइन संरक्षण के लाभ को सभी हितधारकों, विशेषकर छोटे और मझोले उद्यम, स्टार्टअप और स्वतंत्र डिजाइनरों के लिए पहुंच प्रदान करना है. पिछले दशक में भारत के डिजाइन पंजीकरण 3 गुना बढ़े हैं, साथ ही घरेलू फाइलिंग में पिछले 2 वर्षों में 120% की वृद्धि हुई है.
And in some other stories, a conference on potential of blue economy in the Indian Ocean region, Voyage Sri Lanka 2024, was held at Colombo today. Speaking at the conference, Vice Chairman of the India Sri Lanka Chamber of Commerce and Industry, Dr. Naresh Bana, has said that neighborhood first policy and increasing trade and commerce between India and Sri Lanka is important for both the countries. He added that India has been helping Sri Lanka in several ways, including in energy sector, ports, railways, among others. Dr. Bana said that India, through the International Solar Alliance, has helped Sri Lanka through capacity building, financing and execution of projects, apart from helping develop wind energy capabilities of about 500 megawatts.
आइए आगे बढ़ते हैं. कोयला मंत्रालय ने अपने सार्वजनिक परामर्श अभ्यास के अंतर्गत कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण और विकास संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे पर जनता से सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं. इस संशोधन विधेयक के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों और संबंधित संशोधनों को तालिकाबद्ध करके मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. मसौदा विधेयक पर सुझाव डॉक्टर सोलंकी @nic.in और arvind.kumar70@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती है। और अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशिया के प्रमुख पांच बाजार पर हम नजर डालेंगे, जिनमें से चार घाटे में आज रहे हैं। बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.8% से अधिक नीचे चला गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी 0.5% से अधिक की गिरावट देखी गई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम सूचकांक 0.5% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.12% नुकसान में रहे। वहीं निवेशकों की लिवाली से हांगकांग का हिंगसेंग 0.04% लाभ में रहा। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो प्रमुख बाजारों में समाचार तैयार किए जाने तक नरमी देखी जा रही थी। फ्रांस का कैक 40 0.5%, जर्मनी का डेक्स 0.4% नीचे चल रहा था। लंदन के फुटसी 100 में भी 0.2% से अधिक कमी दिख रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा हम एशियाई बाजार पर ठहर के आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, विशेष रूप से चीन की ओर। वहां से क्या खबरें आ रही हैं, वहां की अर्थव्यवस्था और जो पूरा वहां का माहौल है, वह क्या संदेश दे रहा विश्व अर्थव्यवस्था के लिए?
देखिए, अभी जो चीन की हालात है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है अभी तक। खैर, उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस अभी ही उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन लोगों को इस स्टिमुलस से लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कहा जाता है कि ये स्टिमुलस काफ़ी नहीं है इकोनॉमी को बढ़ाने में। और बात यह है कि जैसे तेल की कंजम्पशन फॉर इंस्टेंस हम बात करें, तो चीन जो है वो काफ़ी पिछले शायद 20 साल से जो तेल की जो खरीद हो रही थी वर्ल्ड मार्केट्स में, सबसे ज़्यादा खरीद इंपोर्ट्स हो रही थी चाइना की। लेकिन क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, उनकी ग्रोथ रेट इतनी बढ़ रही थी, उनके वहाँ कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट बहुत काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत चल रहा था, तो तेल की ज़रूरत बहुत थी। लेकिन अब क्योंकि ये यहाँ स्लो डाउन हुआ है और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में भी स्लो डाउन हुआ है, तो तेल में उनकी ज़रूरत कम हो गई है। और जबकि इसका डिमांड कम हुआ है, तो इसका इतना असर हुआ है कि सारे विश्व भर ऑयल मार्केट्स में ऑयल मार्केट्स के जो दाम हैं वो कम हुए हैं। ये एक साल से चल रहा है, लेकिन ये 2-3 महीनों से ज़्यादा ही तेल के दाम कम हुए हैं। और अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि आगे वाले दिनों में, आगे एक साल में डिमांड चीन में बढ़ेगी नहीं। अब ये बढ़ेगी क्यों नहीं, क्योंकि ये नहीं लगता कि उनकी इकॉनमी का रिवाइवल होगा। तो ये जो एस्टिमेट्स चल रहे हैं कि इकॉनमी का रिवाइवल नहीं हो रहा है, और जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं उनके 5% तक भी नहीं पहुंच रहे, तो इससे ये लगता है कि जो चीन की इकॉनमी है वो धीरे धीरे उसकी जो दर है वो धीरे कम हो रही है। और उसके ऊपर से ये अमेरिका में ये नए राष्ट्रपति आए हैं और वो कहते हैं कि आप चीज़ें जो हमारे देश में भेज रहे हैं उसके ऊपर हम टैरिफ्स काफ़ी भारी लगाएंगे।
टैरिफ से संबंधित एक खबर हमारे पास है, हमें लगता है कि yes. हमें उस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए।
यस मनोज जी, इनफैक्ट द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड दैट ही विल इंपोज, एज सुषमा जी वर मेंशनिंग, विल इंपोज अ 25% टैरिफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको, एंड एडिशनल 10% टैरिफ अबव एनी एडिशनल टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना to check the flow of illegal immigrants and drugs into the United States. Now, in a series of social media posts, Mr. Trump said that he would sign executive orders imposing tariffs on the three countries as one of his first actions after assuming office on the 20th of January. Mm-hmm. President-elect Trump had said frequently during the campaign that he would use tariffs to protect and promote U.S. interests. So, Sushmaji, you were just mentioning about the tariffs the President-elect Trump has kind of announced for China.
Yes, yes.
This is indeed cheap, but the more kind of important point here is that India has been kept out of this list,
yes.
which was earlier there in his earlier term.
Yes.
And this is very very important for India.
Yes.
यहाँ पर सुषमा जी यानी मैं यही समझना चाह रहा हूँ और श्रोताओं के साथ अपनी कह लें कि संभावना और जो कह लें कि अच्छे अवसर है उसकी ओर ले चलना चाह रहा हूँ कि चीन पर एक तरफ प्रतिबंध लगता दिख रहा है, भारत इससे बचा हुआ है और चीन की अर्थव्यवस्था भी धीमी चल रही है, जिस गति से अपेक्षा थी वहां नहीं जा रहे। भारत में जो लगातार नवाचार हुए यानी स्टार्टअप्स हुए और उनमें कुछ में हम अच्छी प्रगति देख रहे हैं, चाइना प्लस वन की एक पॉलिसी आई थी जिसमें हम लाभ उठाएंगे ऐसा हमने सोचा था, मेड इन इंडिया करके और भारत में बनाइए दुनिया भर में बेचिए, वहां हम कहां पहुंचते दिख रहे हैं अमेरिका की स्थिति को, ताजा स्थिति को ध्यान में रखते हुए?
आपका सवाल बहुत लंबा है
जी 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 जी
हाँ, तो जो आपका अंतिम सवाल है वो चाइना प्लस वन के ऊपर है, तो मेरे ख्याल में वहां हमें लाभ तो मिला है लेकिन उतना लाभ नहीं मिला जितना हमको मिलना चाहिए था। अब हमारी अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो तौर तरीके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, अभी भी हमारे देश में काफ़ी ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेप है और लोगों ने देखा है कंपनीज जो आना चाहती है और जल्दी से अपना कारोबार शुरू करना चाहती है वो वियतनाम जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, मेक्सिको भी जा रहे हैं, तो वहाँ उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन पॉजिटिव बात तो ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जैसे बिग टेक की, जैसे एप्पल ने कहा, सोचा है कि अब हम इंडिया में ही लगाएंगे और उन्होंने बड़े बड़े कारखाने लगाए हैं कर्नाटका में भी, तेलंगाना में भी और वो साउथ में वो लगा रहे हैं। सो चाइना प्लस वन लगता है कि धीरे धीरे वो चाइना से बिल्कुल ही उतार अपनी जो सारी फैक्ट्रीज हैं वहां लाएंगे, वहां से लेके इंडिया ले आएंगे। लेकिन अभी तक हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है एप्पल की और बहुत सारी कंपनीज की, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां पर चीन में, तो हम ये नहीं सोच सकते कि भी चीन प्लस वन है तो हमारे
रातों रात हमारे यहाँ आने
जाए। करेक्ट। एंड टेकिंग अ क्विक लुक एट द यूएस मार्केट्स, यूएस स्टॉक्स एज्ड हायर यस्टरडे आफ्टर स्कॉट बेसेंस नॉमिनेशन एज द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हेल्प push bond yields lower. The Dow Jones Industrial Average jumped 1%, S&P 500 added 0.3%, and Nasdaq Composite ended the session with a gain of over 0.2%. And moving quickly on to crude, oil prices rose today. Brent crude was trading 1.05%, up at $73.78 per barrel, and the WTI crude had gained 1.04% to trade at $69.66 per barrel, according to the latest reports. Sushmaji, a while back you had mentioning about the Chinese import of oil products. So at $73.78 per barrel Brent, and same with the WTI as well, where do you see this going in the coming times?
Well, I think this is just a small spurt. I think we're going to continue. It has been in the range for the last few months of $70 to $74. And this is the lowest ever since the Ukraine war broke out. So this is going once again into bearish territory, oil prices. And I talked about China. The other factor is geopolitical tensions. It looks like that will weigh on prices. One of the reasons that there has been a little spurt in prices is that there has been some escalation in the Ukraine-Russia war. But again, their peace talks are going on between Israel and Hezbollah. So yes, it looks like things will settle down.
आइए चलें सर्राफा बाजार। सर्राफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.2% घटकर 75,410 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 0.14% उछाल के साथ 88,210 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति वाला सोना 0.16% बढ़कर 75,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी दिसंबर आपूर्ति वाली 0.97% बढ़कर 88,554 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू मनोज।
थैंक यू सो वेरी मच सुषमा जी। एंड बिफोर वी क्लोज इट्स हियर अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Domestic benchmark indices end with marginal losses. Sensex holds 80,000 level. Nifty settles at 24,194. Cabinet approves SPAN 2.0 project, aims at transforming taxpayer registration services through technology, and global crude prices rise over 1%. Brent crude trades at $73.78 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra from the entire team here. That's goodbye. Market Mantra. Market Mantra.